वाणी चल रही थी 8 मई 1966 प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है और सब शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु जानते नहीं है क्योंकि सब धर्म आपस हो गए। माने कोई धर्म का कोई धनी धोरी नहीं रह गया है। भारत खास और दुनिया जनरल, जहाँ बाप आते हैं उन्हें कोई पता नहीं है शिव बाबा कब आया, ऐसे शिवरात्रि मनाते रहते। राम जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं तो तिथि तारीख का पता है, लेकिन कब आए वह बात किसी को पता नहीं। कहते राम त्रेता में जन्म लिया, कृष्ण द्वापर के अंत में आया, लेकिन शिव कब आया ये कोई को पता नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि का अर्थ भी नहीं जानते। रात्रि माना अज्ञान अंधकार की रात्रि। जब इस सृष्टि में अज्ञान अंधकार की खूब रात्रि हो जाती है, चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान फैल जाता है, तब शिव आते। उनके कब आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं। अरे कलयुग के अंत में इतनी साइंस तरक्की कर रही है, अज्ञान अंधकार कहाँ फैला हुआ है। इतनी ऊंची ऊंची महलवाणियां आचार्यां बन रही है, इतने प्रकार की नॉलेज निकली हुई है। वकीलों की नॉलेज अलग है, डॉक्टरों की नॉलेज अलग है, इंजीनियर्स की नॉलेज अलग है, अनेक प्रकार का ज्ञान निकला हुआ है, उसको अज्ञान कैसे कहेंगे। अज्ञान इस रूप में कहेंगे कि सारी मनुष्य सृष्टि में से बहुत थोड़ी आत्माएं सुखी होती है मानवीय ज्ञान से, और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं दुखी होती है। ईश्वरीय ज्ञान तो वो है जिस ज्ञान से सारी मनुष्य सृष्टि मनुष्य मात्र सुखी हो जाए, मनुष्य मात्र का जीवन सुख शांतिमय हो जाए। मनुष्य के ज्ञान से जो आज दुनिया बनाई गई है, मनुष्य ने अपने ज्ञान से उस दुनिया को ध्वस्त करने का बारूद भी तैयार कर लिया, एटम बम भी बनाई लिए। जैसे कि कोई आदमी जिस डाल पर बैठा हुआ हो उसी डाल को काट रहा हो, तो उसकी बुद्धि उसका ज्ञान तामसी ज्ञान कहेंगे या सात्विक ज्ञान कहेंगे। शिव तो सदा शिव, शिव न कभी तामसी बनता है न कभी रजो बनता है, वो तो सदैव सत्य ही है। सिख लोग गाते हैं होती भी सत्य, सत्य ही रहेगा, सत्य ही था और अभी भी सत्य है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण उस सत्य को छुपा दिया गया। जैसे सूर्य तो हो लेकिन अंधकार सूर्य को छुपाए देता है, अथवा बादल सूर्य को छुपाए देते हैं, अथवा धूल सूर्य को छुपाए देती है। जैसे ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है ना, क्या सूर्य अंधेरे में आ जाता है या सूर्य को देखने वाले अंधेरे में आ जाते हैं, क्या होता है, हैं?
सूर्य तो
कैसे, सूर्य तो दिखाई नहीं देता, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य तो दिखाई नहीं देता, हमारी आंखें सबकी तो खुली हुई होती है,
सूर्य तो होता है ना,
फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? हाँ, क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है, क्या उस चंद्रमा की परछाया हमारे ऊपर पड़ती है, चंद्रमा की परछाया हमारे ऊपर पड़ती है, तो जिनके ऊपर परछाया पड़ती है पृथ्वीवासियों के ऊपर, वो समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर अज्ञान अंधकार नहीं आ सकता। ऐसे ही वो सत्य सेवा सत्य था सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा, लेकिन अभी कलयुगी प्रभाव के कारण ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा का स्वरूप देखा है, सूर्य का भी रूप देखा है, धब्बे किस में है, सूर्य में है या चंद्रमा में है? चंद्रमा में धब्बे है, उनको कहते हैं कलंक, सूर्य पर कलंक नहीं लग सकता, कोई कितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश करे, सूर्य तो सदा ही कलंकहीन है। अब ये ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद में आ जाओ, ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, और ज्ञान चंद्रमा कौन है? कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा। तो कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा जो पाठ बजाते हैं दादा लिंगराज ब्रह्मा के रूप में, उस स्वरूप की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, क्यों? क्योंकि संपूर्ण नहीं बना। ब्रह्मा के बच्चों ने ब्रह्मा बाप की लाज नहीं रखी, उल्टे उल्टे कर्म किए, तो कलंक लग गए। वही पार्ट ज्ञान सूर्य का है, ज्ञान सूर्य के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पल नहीं सकते, चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की ज्ञान रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते रहे, अभी भी पल रहे, अभी भी माँ की ममता उन कीड़े मकोड़ों को पाल रही है इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल देवता होता है वो तो देवता ही रहता है, भले कितना भी संग के रंग में आता रहे, और जो ओरिजिनल दुष्ट होता है जिसका शुरू से ही खून खराब हुआ पड़ा है, राक्षसी स्वभाव का है, वो थोड़े समय के लिए संग के रंग में आकर के पलटेगा, फिर ज्यों का त्यों हो जाए, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही है, कहते हैं 12-13 वर्ष कुत्ते की पूंछ डंडे में बांध के रखी जाए, जब निकालेंगे तो फिर टेढ़ी। स्वभाव संस्कार आत्माओं में नुधरे हुए हैं, अनादि संस्कार है, जो राक्षसी स्वभाव के हैं वो ज्यादातर ज्यादा जन्मों में राक्षसी स्वभाव के हैं, और जो दैवी स्वभाव के हैं वो भले उनको कुसंग लगता है तो भी भगवान के आने पर वो जल्दी सुधर जाते हैं, और जो ओरिजिनल राक्षस हैं स्वभाव संस्कार के वो भगवान के आने पर भी जल्दी नहीं सुधरते। अब भगवान तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, देह है اندھیر نہیں ہے لیکن ان کو سدھار کے ہی چھوڑتا ہے, لیکن نمبر پیچھے ہو جاتا, مالا میں ان کا نمبر نہیں آ پاتا. جو سوریہ ونشی چندر ونشی شیش ساتمائے ہیں وہ نمبر لے جاتی ہیں. چندر ونشی کیوں نمبر لے جاتے ہیں؟ چندرما میں تو داغ دکھائے جاتے ہیں, وہ نمبر کیوں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ اس دھرنی کے سب سے نزدیک کون ہے؟ چندرما. جتنے بھی گرہ اپگرہ ہیں ان میں سب سے نزدیک ہے چندرما, اور سوریہ بہت دور ہے. سوریہ کی روشنی سے سارے گرہ اپگرہ روشنی لیتے ہیں گیان کی, سب کی پالنا ہوتی ہے, لیکن جیون صرف کہاں ہے؟ دھرنی پر ہی جیون, کیونکہ دھرنی سب کو آکرشت کرتی ہے. تو جتنے بھی نو گرہ ہیں ان سب گرہوں کے بیچ میں سب سے جاتی آکرشن کس کا ہوتا ہے؟ سب سے نزدیک کون آتا ہے؟ چندر. تو گیان چندرما برہما جو دھرنی کا پارٹ بجانے والی شکتی ہے, دھرنی ماتا ہے, اس سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. سوریہ کے اتنے نزدیک نہیں ہے. اگر سوریہ کے بھی اتنی نزدیک رہا ہوتا تو سارے کلنک سارا کیچڑ دھل جاتا. کہتے ہیں کرشن نے کیا دیکھا؟ چوتھ کا چندرما دیکھا. اب کوئی چوتھ کا چندرما دیکھنے سے کلنک نہیں لگتے ہیں, یہ تو براہمنوں کی سنگمی کی دنیا کی بات ہے. سمپورن کو دیکھیں گے تو سمپورنتا کے گن آئیں گے, ادھورے کو دیکھیں گے تو ادھورا پنا. اور گیان چندرما ابھی بھی سمپورن بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ ابھی بھی نہیں بنا, ابھی بھی گیان سوریہ کا پارٹ بنانے والا جو سوروپ ہے وہ چندرما کو مستک پر دھارن کرتا ہے. کیوں دھارن کرتا ہے؟ کیونکہ ادھورا پن تو ہے لیکن کسنگ سے یہ ادھورا پن آیا ہے. جو آسری بچوں کا سنگ کا رنگ کیا ہے ماں ہوتی ہے. کتنا بچے دکھدائی دکھ دیتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں بچھو کے گھر, لیکن ماں ان کے پرتی کیسا بھاؤ رکھتی ہے؟ پیار بھرا بھاؤ رکھتی ہے. یہی برہما گیان چندرما کی حالت ہے. بچوں کے سنگ کے رنگ سے ساری شکتی اپنی ختم کر دیتی ہے اور آسری گنوں کو اپنے اندر دھارن کر لیتی ہے جو کلنک کے روپ میں دکھائی پڑتے ہیں. وہ کلنک اس کے اپنے نہیں ہے واسطو میں. اور وہ گیان چندرما جو کلنک کو دھارن کرنے والا ہے وہ پرتھوی کے آکرشن میں آتا ہے. پرتھوی کے آکرشن میں آتا ہے تو پرتھوی کے چاروں اور گھومتا ہے. اس گھومنے کے چکر میں کبھی کبھی سوریہ اور پرتھوی کے بیچ میں چندرما آ جاتا ہے. ایک طرف سوریہ, دوسری طرف پرتھوی, اور بیچ میں چندرما آ جاتا ہے. تو چندرما کا پرچھایا پرتھوی واسیوں پر جہاں جہاں پڑتا ہے وہ سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں. سوئم اندھیرے میں آ جاتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ سوریہ کو گرہن لگ گیا. تو یہی حالت ہے براہمنوں کی دنیا میں اس سمے. نشچے نشچے کا چکر کیوں کو نہ چلنا چاہیے جب ایک بار سمجھ لیا کہ یہ گیان سوریہ کا پارٹ ہے. ہمیں گیان سوریہ ملا ہوا ہے جس کے نزدیک رہنے سے گیان اندھیرے کا نام نشان نہیں رہتا. बार बार क्यों प्रभाव में आना चाहिए? जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, क्योंकि वहां जीवन नहीं है, इसलिए वो सब चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं। चंद्रमा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, चंद्रमा उनके लिए माँ का पार्ट बजाता है। जैसे आज की दुनिया में होता है, माँ को बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर बाप नहीं है तो बच्चों का राज्य चलता है, माँ की कोई नहीं मानता। यही हाल ब्राह्मणों की दुनिया में लगा पड़ा है। ब्रह्मा से प्यार लिया, ब्रह्मा से ज्ञान दूध लिया, उस ज्ञान दूध की कोई वैल्यू नहीं। अब बाप कहते हैं कि मैं असली बात बताने आया हूं। उनको तो पता ही नहीं है शिव बाबा कब आया, वो तो अंधेरे में, और कैसे आए इनों को, उन ब्राह्मणों को भी पता नहीं है शिव बाबा कब आया। वो क्या समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया, इससे आगे कुछ जानते हैं?
थोड़ा थोड़ा जानने लगे
हैं, लेकिन कोई जान बूझ करके अनजान बन जाए तो उसका जानना न जानना बराबर हुआ ना। वो जानते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं जानते, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जब तक तन्मुख न सुनाया जाए। तन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। इसी भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि भगवान के सन्मुख आकर के जब कोई न सुने, क्या सन्मुख की फर्स्ट क्लास वाणी जब तक न सुने तब तक उसके ज्ञान चक्षु पूरे नहीं खुलते। तो ज्ञान सूर्य को कोई जानते नहीं है कि वो कब आया और कैसे आया। तुम बच्चे जानते हो कि यज्ञ के आदि में वो ज्ञान सूर्य किसमें आता है, हैं? पहले ब्रह्मा में आता है, आज ब्रह्मा में, क्या भारत माता में आता है। इसलिए आता है, हाँ फाउंडेशन डाले। तो भक्ति है फाउंडेशन, भक्ति क्या है, भक्ति है फाउंडेशन। और उसमें आकर के फाउंडेशन में क्या काम करता है, सुनने और सुनाने का कार्य करता है। उस सुनने सुनाने से गति सदगति होने वाली नहीं है। गति सदगति तब होती है जब वो सुनने सुनाने का काम पूरा होता है। सबसे पहले कौन सुनता है, गीता माता सुनती तो है लेकिन कोई सुनाने वाला थोड़ी होता है, वो तो प्रवेश करता है सिर्फ, उसके कानों में थोड़ी सुनाता है, सिर्फ प्रवेश करता है और प्रवेश करके सुनाने का कार्य करता है। तो सुनता कौन है, पहले प्रजापिता सुनता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ, प्रजापिता हुआ पहला ब्राह्मण। इसलिए मुरली में बोला है जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र सो फिर पहला ब्राह्मण। क्या हर युग में उस आत्मा को आगे आगे पार्ट बजाना, इसलिए शास्त्रों में हनुमान का रूप दिखा दिया। स्तुति में कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। क्या चाहे कोई युग हो हर युग में वो आगे आगे जा। तो आसंस हो गए हैं, जानते नहीं है कि वह कैसे आया और कब आया, कुछ भी पता नहीं है। अब हमारा बाबा तो कितना मीठा है, अरे कीड़े मकोड़ों से पूछो कितना तल गीला है। तुम्हारे लिए तो बहुत मीठा है, हमारे लिए तो बहुत कीड़े मकोड़ों जैसा काटने वाले उन जंतुओं के लिए कितना मीठा है या कड़वा है, उनको तो कड़वेपन का अनुभव होता है। दुनिया में भी ऐसा होता है, एक आदमी किसी के लिए सुखदाई लगता है और दूसरे के लिए दुखदाई लगता है। कुछ लोगों को उसका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को उसका स्वभाव संस्कार बहुत खराब लगता है। बाबा तो मीठा है, मीठों के लिए मीठा है और कड़ुओं के लिए कड़ुआ है। कहते हैं शिवशंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ कहते हैं या भोले भाले कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं। वो भोलों को अपने अंतर में कर लेता है, जैसे माया भोले भालों को पकड़ती है वैसे शिव बाबा भी भोले वाले बच्चों को पकड़ते हैं, उनको अपने अंतर में लेता है, अपनी छत्र छाया में लेता है। तो भोलेनाथ कहा जाता है। फिर जो भोले नहीं है, छल छिद्र कपट वाले हैं, जिसके भी संपर्क में आएंगे उसके साथ छल छिद्र कपट से बाध नहीं आएंगे, ऐसे टेढ़े स्वभाव वालों के लिए वो फिर भाला है। वो भोला बन के नहीं मिलता है, भाला बन के। एक होता है छोटा सा कांटा, कांटा सुई जैसा, बबूल का कांटा, और एक होता है बड़ा भाला, कांटा भी नहीं, कांटे के कई गुना ज्यादा तीखा और ज्यादा बड़ा भाला ना। तो भाला कौन है और भोला कौन है? नाम तो दो कहते हैं, शिवशंकर। शिवशंकर में प्रवेश करता है, शिव है भोला और शंकर, माने जो भोले बच्चे हैं उनको शिव दिखाई देता है, कांटे जैसे हैं उनके लिए वो भाला दिखाई देता है। तो वो मिठाई जिसको याद करते थे वो अभी सन्मुख बच्चों को समझाए रहे। समझाने वाला कौन है, शिव समझाने वाला है या शंकर समझाने वाला है? या शिव समझाती, शिव ही समझाता है टीचर बनता, शिव सुप्रीम टीचर बनता है, लेकिन भाले में प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। क्या कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो ये दुनिया राक्षसों की है, तो राक्षसों की दुनिया को सुधारने के लिए भी कौन चाहिए? राक्षसों का भी बाप, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कौन? प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन हुआ? प्रजापिता। मनुष्य बिगड़ते हैं तो राक्षस बन जाते हैं, मनुष्य सुधरते हैं तो देवता बन जाते हैं। तो देवताओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप, राक्षसों का भी बाप कौन हुआ? प्रजापिता। तो वो जो प्रजापिता सबका बाप है, वो मुर्गियों में बीच बीच में बोलता भी जाता है, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। बच्चे सामान्य अर्थ में ले लेते हैं और गहराई को नहीं समझ पाते, तो राक्षसों का भी बाप है, हरामियों का भी हरामी है, पापियों का भी महापापी है। क्या पापियों का बाप नहीं आया हुआ? तो पापियों का भी पापी महापापी बाप बनकर के आता है, पतितों का भी महापतित बनकर के आता है। परमात्मा प्रवेश किसमें करते हैं? बड़े से बड़े कानी कांटे में आकर मैं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। बड़े से बड़े फूल को क्या कहते हैं? फूलों को राजा कौन कहा जाता है? कमल कमल। उससे बड़ा कोई फूल होता नहीं। तो जिसको याद करते थे वो सन्मुख बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने वाला शिव बाबा है, शंकर नहीं है। क्या ज्ञान की गहराई कौन समझाता है? स्वरूप तो एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक है, लेकिन उसमें समझाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। क्या जिसमें प्रवेश करते हैं?
अरे
अभी हरामियों का भी हरामी बाप, पतितों का भी पतित बाप, राक्षसों का भी राक्षसी बाप, सारे बुरे से बुरे टाइटल भी उसे मिले हुए हैं, और उसमें प्रवेश करता है। अच्छे टाइटल भी मिले हैं, लेकिन अभी क्या है जो मिले हैं वो तो सतयुग में मिलते हैं, सतयुग के आदि में। अभी क्या है जब दुनिया पलटने वाली है?
अब धर्मराज का पार्ट,
तो जो धर्मराज का पार्ट है वो वास्तव में शंकर का नहीं है। धर्म का राजा शंकर नहीं है, धर्म का राजा है ब्रह्मा बाबा। युद्ध स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, भले शरीर छूट जाए, क्या भले ये साकार तन छूट जाए, कहते हैं ना हम मर जाएंगे भी तो भी हम भूत बनकर के तुम्हारा पीछा
रहेंगे।
तो वो युद्ध में स्थिर रहने वाला है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो अपना काम करके जाता है। युद्ध भूमि में वो पीछे हटने वाली आत्मा नहीं है। धर्मराज का पार्ट तो ब्रह्मा बाबा किस तन से बजाता है? तन तो बाप और दादा दोनों का एक ही है। बाप माना शिव, दादा माना ब्रह्मा कृष्ण की सूर्य। वो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाता है ब्रह्मा, और वो ज्ञान सूर्य शिव के रूप में, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है सदा शिव, तीसरे नेत्र के रूप में पार्ट बजाता है प्रवेश करके। और जिस तन में दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं वो किसका शरीर है? राम वाली आत्मा। तो तीन स्वभाव संस्कार की आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कह दिए। वो त्रिमूर्ति शिव जिस तन में आता है वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। रथ माना तन शरीर, भाग्यशाली रथ क्यों? दादा लेखराज का भाग्यशाली रथ हुआ, ये शंकर का भाग्यशाली रथ हुआ।
शंकर को अमर भक्त का वरदान
है। अच्छा, शंकर का भाग्यशाली रथ हुआ। भाग्यशाली उसे कहते हैं जिसके जीवन में खूब सुख हो, खूब शांति हो, हैं? खूब धन संपत्ति हो, खूब शरीर का सुख हो, तन का सुख हो, मन का सुख हो, धन का सुख हो, संबंधियों का सुख हो, ये भाग्यशाली रथ कहता।
बाबा जिसने बाबा पर शिव बाबा
ब्रह्मा में प्रवेश
जो निराकार विष्णु में है, जिस तन में प्रवेश करेंगे वो भाग्यशाली रथ हुआ।
तो ब्रह्मांडन में भी प्रवेश किया
पाते हैं,
ब्रह्मा के तन में भी प्रवेश किया, यज्ञ के आदि में यज्ञ माता में भी प्रवेश किया, तो दोनों भाग्यशाली क्यों नहीं होना चाहिए?
उसमें सारी सोल आती है, व्यक्ति पार्ट भी आती है।
क्या
इसलिए भाग्यशाली
सारी सोल आती है?
जो तीन सोल है उनका कॉम्बिनेशन है,
सोल है उनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जिसने में 14 सोल आती है वो ज्यादा भाग्यशाली होने चाहिए। संपूर्ण तो कोई भी काम नहीं हुआ अभी, अभी तो किसी का काम संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। कौन देवता बन गया है? सारी दुनिया से नहीं हुआ, इब्राहिम से नहीं हुआ, बुद्ध से नहीं हुआ, क्राइस्ट से नहीं हुआ, गुरु नानक से नहीं हुआ, विवेकानंद से नहीं हुआ, गांधी जी से नहीं हुआ, किसी से हुआ ही नहीं। वो तब की बात तब अभी बताओ अभी उसको भाग्यशाली रख कैसे कह दिया
उस दान में प्रवेश करते हैं
भाग्यशाली रथ इसलिए कह दिया कि भले ब्रह्मा ने चैन की बंसी बजाई जब बहुत शांति का पीरियड था उस टाइम में स्थापना का कार्य करके चला गया शरीर छोड़ करके लेकिन वो टेम्परेरी रथ था क्या टेम्परेरी रथ था उस रथ के द्वारा कार्य पूरा होने की संभावना असंभावना पहले ही बता दी और शंकर का स्वरूप ऐसा रथ है जो आज में भी और अंत में भी बरकरार रहेगा मुकर्रर रथ है इसलिए भाग्यशाली मुकर्रर रथ होने के बावजूद भी भले उसे सबसे जास्ती छिब्बे खाने पड़ते लेकिन जो अपनी सारी जिम्मेवारी जो आत्मा ऊपर वाले को दे देती है उसके ऊपर कोई बदल बदल बाबा बच्चों को भी कहते हैं बच्चे तुम अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों लेते हो मेरा 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 जहाँ मेरा मेरा कहते हो वहीं फंस जाते हो परेशान हो जाते हो तंग दुखी होते हो रोते हो बिलबिलाते हो मेरा मेरा न कहो क्या कहो सब कुछ
तेरा
कुछ नहीं कुछ नहीं लेकिन मुंह का बक्का लगाना तो आसान है अब प्रैक्टिकल कर्म करने में थोड़ा नंबर वार हो जाते तो उसमें जो अव्वल नंबर आत्मा जाती है किसमें सब कुछ
तेरा
वो फिर है राम वाली आत्मा मान प्रजापिता वाली आत्मा जो शक्ति का हीरो है अब हीरो वाली आत्मा जो तन धारण करती है अपना वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है क्योंकि भाग्य विधाता उसमें प्रवेश करके सारी मनुष्य शक्ति का भाग्य बनाता है तो जिसके द्वारा सारी मनुष्य शक्ति का भाग्य बनाएगा उसका अपना भाग्य तो जरूर बनेगा ही बनेगा और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते क्या कहा यही मुकर्रर रथ है भाग्यशाली रथ है और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते क्यों नहीं दे सकते कोई भी रथ ले ले नहीं इसलिए नहीं ले सकते कि सबसे जास्ती जन्म कौन से हो किसके होते हैं जो जिसके सबसे जास्ती जन्म होंगे जो ऑलराउंड पार्टधारी वाली आत्मा होगी वो जास्ती अनुभवी होगी जिसके जास्ती जन्म होंगे वो जास्ती अनुभवी होगी जिसके कम जन्म होंगे कम अनुभवी होगी तो अनुभवी तन में आते हैं या गैर अनुभवी तन में आते हैं अनुभवी तन में आते हैं क्योंकि युवाओं को तो ढेर सारा काम करना पड़ता है क्या सब करते तो बस बैठ गए ध्यान में और कुछ करते धरते हैं क्या चित्रों में क्या दिखाते हैं उनका कौन सा चरित्र दिखाते हैं ध्यान में बैठे हुए और तो कोई काम करते नहीं दिखाते और ध्यान में बैठना याद करना ये कोई काम थोड़े ही है तो कोई काम हुआ क्या वो काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है तो शंकर को कोई काम नहीं है इसलिए मुरली ने क्या बोला शंकर कुछ नहीं करता
शंकर का पार्ट ही नहीं
है शंकर कुछ नहीं करता है शंकर का पार्ट ही नहीं क्योंकि पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है अरे शंकर का पार्ट भी नहीं है शंकर कुछ नहीं करता है तो इतना बाकी क्यों बन जाता है भाग्यशाली रथ कैसे बन जाता है
में फोटो भी शंकर के लगाते हैं भक्ति मार्ग में
इसलिए भाग्यशाली बन जाता है कि जो मुख्य कार्य है पुरुषार्थियों का मुख्य काम क्या है शिव बाबा को याद करना तो मुख्य काम तो वो करता है इसमें कर्मेंद्रियों से करने की कोई बात है ही नहीं जो याद में मस्त रहेगा वो याद के प्रभाव से कोई भी मनुष्य आत्मा से कोई काम करा सकता है क्या शक्तियों को प्रेरणा देकर के सारी आत्म शक्ति का संगार कराया प्रेरणा देता है क्या? खुद नहीं करता, खुद करे तो दोष आ जाए, खुद करे तो उसके ऊपर पाप लग जाए। इसलिए करणहार और परावरणहार गाया जाता है, वो शिव है और शिव का जो बच्चा है वो भी बाप समान है कि नहीं, तो वो भी करणहार के हिसाब से कुछ नहीं करता, सिर्फ याद करता है। याद भी तो करना कोई कुछ है ना, भले कर्मी से उनके काम नहीं करता है, याद में रहता है। तो याद की शक्ति से दूसरी आत्माओं से वो कार्य करा रहे हैं। तो बाप बच्चों को सन्मुख समझाए रहे हैं, क्या सन्मुख माना विमुख होकर के नहीं समझाए रहे, सन्मुख सामने बैठ करके समझाए रहे। एक होता है सन्मुख और एक होता है विमुख। तो बाप अपने बच्चों से कभी विमुख नहीं, जो बच्चे नहीं है जो भक्त बनते हैं। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। और ज्ञान कहाँ से आता है? राम बाप से आता है। राम बाप में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है। तो जो ज्ञान सुनाने वाला है वो है राम बाप, और जो अज्ञान अंधेरा फैलाने वाला है वो है रावण। अनेक मतों से होता है रावण राज, और एक मत से होता है राम। इसलिए राम को एक मुख दिखाते हैं,
राम तो
एक मुख से एक बात करता है। कोई कोई दुकान होती है ना, तो दुकान में बोर्ड लगा रहे थे एक दम एक बात। तो बाबा की भी ऐसी ही दुकान है, क्या एक बात करता है, दूसरी बात दूसरी दो दो बातें नहीं करता। जैसे वो एक देवता है शंकर जी का बच्चा, क्या नाम है उसका, सन्मुख कार्तिकेय, उसको कितने मुख दिखाए जाते हैं नहीं मालूम। एक बच्चा है उसको तो हाथी का सूंड दिखाया जाता है, है? गणेश जी वो तो छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा भी है कार्तिकेय, उसके छह मुख दिखाए जाते हैं। तो वो छह मुख से बात करता है क्या? अभी अभी इस्लाम धर्म की बात करेगा, थोड़े समय के बाद क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा तो कभी संन्यास धर्म की बात करेगा, कभी ध्यान वर्धन बजाएगा, कभी ज्ञान भी सुनेगा। माने एक मुंह पे एक जगह वो आत्मा टिकने वाली नहीं है, वो सात धर्मों को सपोर्ट करता है। और बाबा जो आकर के धर्म स्थापन करते हैं वो विष्णु देवता का धर्म स्थापन करते हैं, वैष्णव बनाते हैं, नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी बने, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के क्या कहे जाते हैं?
विष्णु।
तो विष्णु का राज्य बाप स्थापन करते हैं, रावण का राज्य रावण स्थापन करते हैं। अनेक मुखों से होता है रावण राज्य और एक मुख से होता है राम राज्य। झूठी कहाँ चलती है? ब्राह्मणों की संगत हुई दुनिया। जो एक बात शिव की मुख से निकली हुई मानते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ही चलते हैं, अथवा शिव बाबा जिस एक मुकर्रर रथ से पार्ट बजाते हैं उसकी ही श्रीमत पर चलते हैं, मुकर्रर रथ की श्रीमत पर ही चलते हैं, वो फिर है वैष्णव संप्रदाय। और जो अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं वो सब है। देखो शिव बाबा ने मिसाल बताई है, शिव बाबा ने मुरली में बोला बच्चे शादी बर्बादी है, बोला जब एक पक्का पक्का महावाक्य बोल दिया शादी बर्बादी है तो उसको गुंजाइश
नहीं,
गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चे आते थे ब्रह्मा बाबा के सामने, कहते बाबा बहुत बड़ा परिवार है, माँ बहुत तंग होती है और मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, ये है वो है और दुनिया भर की परेशानियाँ गाथाएं गा करके और बाबा को डुबाए लेते थे। और बाबा कहते अच्छा बच्चा, बच्चा बहुत दुखी है, बहुत तंग है, अच्छा बच्चा शादी कर, लेकिन पंत रहकर दिखाना क्या? बाबा कहते थे शादी कर लो और शिव बाबा बीच में ये बात और छोड़ देते थे क्या? जब शादी कर लो लेकिन पवित्र रहकर दिखाना, न होगा न मन तेल न राधा ना नाचेंगे है, ये हो सकता है क्या? आज की कल की दुनिया में पुरुष तन में इतनी ताकत है कि शादी करके संग साथ में रहे और फिर पवित्र रहे, पर्सी हुई थाली सामने रखी हुई हो फिर कोई छोड़ेगा क्या? हो ही नहीं सकता। सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन बताई दिए, वो अपनी पे आ जाते हैं छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ भी बोला है पत्थर की लकीर समझो, शादी की तो बर्बादी हो के रहेगा। फिर दूसरी बोली में कह दिया पहले ही दिन ढेर हो जाएगा। इस तरह के जो ब्रह्मा बाबा लूज होकर के डायरेक्शन दे देते, मुझे बोला ना ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके भी बोलता है। शिव बाबा बोलते थे और ब्रह्मा की सोच बीच में इंटरफियर करके अपनी बात बोल देती। तो ऐसे ही जो बच्चे बाबा के पास ब्रह्मा बाबा के पास अलग से आते थे डायरेक्शन लेते थे, बाबा उनको डायरेक्शन दे देगा अच्छा बच्चे शादी कर लो। अब वो शादी करने का डायरेक्शन मिल गया वो बर्बादी तो होनी होनी, माना दो डायरेक्शन हो, एक बाप का डायरेक्शन शादी बर्बादी और दूसरा ब्रह्मा माँ का डायरेक्शन, माँ मोह में आकर के जरूर गड़बड़ कर। इसलिए मुरली ने बोला माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझ लो माताओं की पढ़ाई पूरी हो गई। क्या सिर्फ एक ही विकार, मोह के ऊपर अगर माताओं ने जीत पा लिया तो उनकी पढ़ाई पूरी तो होता ही नहीं। बाबा कहते हैं माता गुरु आगे, माताओं को आगे करना ही करना है, माने माताओं को ही नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा बनना पड़े, और जब तक वो बनेंगे नहीं तब तक स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो बाप तो सन्मुख आकर के बच्चों को समझाते हैं, माया सन्मुख आकर के नहीं समझाती, माया विमुख की विमुख ही रहती है और बच्चों से उल्टा काम कराती है। बाप कहते हैं इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है, इनको क्यों कह दिया, इसको क्यों नहीं कहा
नहीं?
हाँ इनको आगे वाले पार्ट तो उनको हो जाता, इनको इनको माने बाजू में है ना, और एक वचन है या दो वचन, बहुवचन है इनको, इसका मतलब राम और कृष्ण वाली आत्माओं को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ये दोनों ही आत्माएं एक शरीर में प्रवेश हो जाती, चंद्रमा की भी आत्मा उसके द्वारा शरथ के द्वारा कार्य करती है, तो ज्ञान सूर्य की आत्मा भी उस रथ के द्वारा कार्य करती है, तो जिसका तन है राम वाली आत्मा का वो भी उसी शरीर के द्वारा याद करता है, तो तीनों का रथ हुआ ना। कहने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं इनको ही माने राम कृष्ण को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। कृष्ण के रूप में कृष्ण का पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज का स्वरूप है, यह दादा लेखराज की आत्मा जब शरीर छोड़ करके कोई मुकर्रर ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है तब वो संग भी कृष्ण का पार्ट बजाती है, जब प्रवेश करती है तब संसार के अंदर संपन्न रूप में वो प्रत्यक्ष होता है संपूर्ण कृष्ण। तो बोला है भाग्यशाली रथ कहा जाता है, और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते। क्या इंद्र रथ के सिवाय कोई कहे कि इनको ही क्यों मुकर्रर रथ बना दिया, हमको क्यों नहीं? आप कहते वो ऑलराउंड पार्ट धारी, जो ऑलराउंड पार्ट धारी है कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, कभी जन्म मरण के चक्र में संगम युग में नहीं आता, मैं उसी में प्रवेश करता हूँ। अगर जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करूँ वो भी अनिश्चय बुद्धि बनने लगे तो सारा ज्ञान ही बेकार हो जाए, रथ बदल ही नहीं हो सकता। क्या ये जो मुकर्रर रथ है यह बदली ऐसे नहीं कि राम की आत्मा की सिवाय किसी दूसरी आत्मा में प्रवेश करके डायरेक्शन देने लगे तो दो डायरेक्शन हो जाएगा। क्या फिर वो एक व्यापी नहीं रह जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वो सर्वव्यापी हो जाएगा। सर्वव्यापी हो जाएगा तो किसकी किसकी पथ पर चले, अनेकों की पथ पर चलने से खत्म हो जाए। तो ये रस बदली नहीं हो सकता है, ये मुकर्रर रस है। कल्प कल्प मैं इसी रस में आकर के पाठ बनाता हूँ। आठ पांच छह छठ की वाणी का दूसरा ऐसे नहीं कि दूसरे कल्प में गुजरात की तरफ जाऊंगा। क्या कहा है, क्या बोल दिया? ऐसे नहीं कि जब दूसरा कल्प होगा तो मैं गुजरात की तरफ जाऊंगा, माने गुजरात में जाकर के जन्म लूंगा। नहीं, क्यों? कहाँ जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। भारत गुजरात में, गुजरात को भारत नहीं कहा जाए, गुजरात भी तो भारत है, है? जब गुजरात भी भारत है तो ये क्यों कह दिया कि दूसरे कल्प में गुजरात की तरफ जाऊंगा? है गुजरात में क्यों नहीं जाऊंगा? है हाँ, ज्ञान की रात होती गई, अज्ञान की रात जिसकी गुजर जाए वो गुजरात, अज्ञान की रात जिसकी गुजर जाए वो है गुजरात। तो किसके अज्ञान की रात गुजर जाती है? तो गुजरात की तरफ नहीं जाता है? वो कहाँ आता है इसी दुनिया में? भारत में तो भगवान आते हैं लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ होते हैं? यूपी में। इसलिए कहा कि ऐसे नहीं कि मैं गुजरात की तरफ जाऊंगा। क्या शिव बाबा भारत में ही एक ही रथ में आएंगे, दूसरे रथ में नहीं आ गए? ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ, ऐसा बना बना बनाया ड्रामा है। इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। तुम आत्मा इन आर्गन द्वारा सुन रहे हो, बाबा इस मुख द्वारा बात करते हैं। मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। क्या आत्माओं का बाप हूँ? जो देह अभिमानी बन करके बैठे हैं उनका बाप
नहीं।
अरे अगर कोई को नींद आ रही हो तो देह अभिमान में हुआ या आत्मा अभिमानी हुआ? आत्मा जागती ज्योति है या सोती ज्योति? ज्योति है, जागती ज्योति। तो जागती ज्योति जो बच्चे हैं वो बच्चे अगर सोते हैं तो उस समय रावण के बच्चे हो गए, कुंभकर्ण के बच्चे हो गए। कोई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिल्लाते बिल्लाते हैं, जैसे बादल गर्जन करता है, मेघ मेघनाथ के बच्चे हो गए। बाप कहते हैं मैं तो आत्माओं का बाप हूँ। सन्यासी लोग तो कह देते हैं शिवो हम सत्तम। क्या कहते हैं? हम ही शिव है, दूसरा कोई शिव नहीं है। जो हम है तो ही तुम हो, आत्मा तो सारी बात बिगाड़ के रख दिए। आत्मा तो परमात्मा कहते सारी बात ही बिगाड़ दी। अरे आत्मा तो परमात्मा कैसे हो सकती है? जो परमात्मा है वो परमात्मा ही रहेगा, जो आत्माएं हैं तो आत्मा ही रहेगी, जो परम पिता है सुप्रीम सोल है वो सुप्रीम सोल ही है। तो सुप्रीम सोल कौन? शिव। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। परम पिता माने जो सबका पिता है, प्रजापिता का भी पिता है, उसका पिता कोई नहीं, तो वो है शिव। उसको कहेंगे परम पिता, परमात्मा नहीं कहेंगे, परम पिता कहेंगे। जितने भी पिताएं हैं उन पिताओं में सबका पिता, लेकिन परम आत्मा नहीं कहेंगे। क्यों?
उसने जब प्रवेश करती तो वो परम पिता है।
परम का मतलब है
प्रजापिता में प्रवेश
करती, सब आत्माओं के मुकाबले
परम
उसको उसको तोड़ा गया, कंपैरिजन किया गया, सब आत्माओं के बीच उसको कंपैरिजन किया गया। तो सुप्रीम सोल को किसी आत्मा के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में ही जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती, सुख दुख भोगती ही नहीं है, तो उसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। उनके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है जो सुख दुख के चक्र में आती हो, जन्म मरण के चक्र में आती हो, उन आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली कौन है?
राम।
हाँ, जो प्रजापिता वाली सोल है, जो राम वाली सोल है, वो आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट जारी है। क्या?
हीरो पार्ट,
सुपरमेसी का पार्ट है, इसलिए वो परमात्मा है। वो परम पिता शिव उस परम आत्मा में, परम पार्ट धारी में प्रवेश करके पार्ट हो जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा शिव। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता शिव, पहले परम पिता फिर परम। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो पहले क्या? पहले शिव, बाद में छोटा, बाद में और बड़ा, बड़ा पहले। कोई दुकान का भी नाम पड़ता है ना, कोई धर्म का, तो कहते हैं एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम लगाते हैं। रामनाथ एंड सन्स कंपनी माने रामनाथ और बाकी सब उसके बच्चे उसको संभाल रहे, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही शिव शंकर है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा है। ये कहने का मतलब ये है कि बड़े को आगे रखा, बाप को आगे रखा और बच्चे को पीछे रखा। तो वो तो कह देते हैं शिवो हम तत्त्वम आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ऐसा होता नहीं कि जो भी 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब परमात्मा बन जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया कुछ उल्टा ही लेती है और परमात्मा उल्टा कर देता है। असली बात परमात्मा बाप बताते हैं कि परमात्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा सिर्फ एक ही है और परमपिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी सिर्फ सुप्रीम सोल शिव ही है, जो सदा शिव है। आत्मा को परमात्मा नहीं हो सकती। बाप तो बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या कोई बाप ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा दुख में रहे, नरक में रहे, रौरव नरक में पड़ा रहे? कोई भी बाप नहीं चाहता। तो ये भी सुप्रीम सोल, ये तो बापों का भी बाप है, ये अपने बच्चों के लिए दुख की सृष्टि कैसे रचेगा? माने द्वापर कलयुग की सृष्टि परमात्मा परम पिता रचने के लिए नहीं आता है। वो क्या रचने के लिए आता है? सुख की सृष्टि आता है, स्वर्ग। कौन सी शक्ति? शक्ति का नाम क्या रखा? स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्व, स्व, स्व माने आत्मा, ग माने गया। माने अगर आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, अगर देवान में रहेंगे तो नरक का अनुभव करते हैं। नाम देखो कैसे अच्छे अच्छे रखते हैं, है? स्वर्ग का नाम सुनने से मुंह में पानी आ जाता है। कोई देवी तो स्वर्ग में जाओगे?
हाँ,
है? नारद जी दूसरों को यही संदेश देते रहते, चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, और खुद कहाँ चक्कर काटते रहते थे? लोग चक्कर काटते रहते। तो स्वर्ग सबको अच्छा लगता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तुमको प्रजापद देते हैं, क्या करते हैं? स्वर्ग का भी मालिक बच्चों को एडाप्ट करते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जैसे लौकिक दुनिया में कोई बाप होता है, करोड़पति है, अरबपति है, उसको बच्चा नहीं है तो कोई बच्चे को गोद ले लेता है, एडाप्ट कर लेता है कि ये बच्चा मेरा है। तो ऐसे ही अभी तो इस दुनिया में सारे ही रावण के बच्चे हैं। क्या सारी दुनिया में किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे। बाप आकर क्या करते हैं? रावण की औलाद को आकर अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अब फिर 5-4 वर्ष बाद मैं आया हूँ तुमको गोद लेने के लिए, اس لیے گود لے کے اماں دودھ پی نا بچہ ٹٹی کر لیتا ہے پیشاب کر لیتا ہے گندا ہو جاتا ہے تو بڑے پیار سے گود میں لے کر اس کو نہلاتی ہے اس کی صفائی کرتی ہے. تو میٹھے میٹھے بچوں اب پھر سے 5000 سال بعد میں آیا ہوں تم کو 25 سے پاون بنانے. 5000 سال پہلے بھی 25 سے پاون بنایا ہے پھر سے کیوں لگا دیے ڈراما ہے تو ایک ہی بار پھر سے کیوں لگایا نہیں پھر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ میں پھر آیا ہوں پھر آیا ہوں مطلب دوبارہ آیا ہوں مانے یتی کے آج میں بھی آیا تھا اس سمے بھی پتوں کو پاون بنانے کی یہ بٹی چلی تھی اور ابھی پھر آیا ہوں مانے یتی کے آج میں بھی ایک ٹیمپل کھڑا کر دیا تھا چورس کا نرک کی دنیا کے بیچ چورس کا ورثہ دیتا ہوں کیا نرک کی دنیا بھی رہے گی اور اس کے بیچ میں ایک سورج کا ٹیمپل بھی کھڑا کر دیا تھا کیسے ہندوستان پاکستان کا جو بٹوارا ہوا تھا تو خون کی ندیاں بہ رہی تھیں ٹرینیں کی ٹرینیں کاٹی جا رہی تھی اور کراچی میں یہ پورا کا پورا براہمن پریوار آنند سے بیٹھا ہوا تھا سب سکھ شانتی کسی پرکار کی دکھ اور اشانتی ان کو تھی ہی نہیں تو نرک کی دنیا کے بیچ کا ورثہ نظارہ نہیں سرگ استھاپن ہوا نا تو ایسے ہی وہ تو تھا سیمپل ہاں ماڈل تھا کیا کس کا ماڈل تھا بھارت میں بھی ایک ماڈل بنایا ہوا ہے اجمیر میں کیا
ایک ہی مندر ہے ایک ہی یادگار ہے اور کہیں بھی نہیں ہے.
ہاں تو بتایا کہ جو سورج کا ماڈل ہے وہ اس میں بنایا تھا بنانے والے کون تھے کہاں بنایا تھا ارے اجمیر میں بھی سورج کا ماڈل بناتے اس کا نام رکھ دیا ہے
اجمیر
اجمن بکری بھیڑ بکریوں نے اکٹھا ہو کر کے سورج کا ماڈل بنایا جو بھی سندھی تھے نا وہ سارے سندھی وہاں اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر کے انہوں نے وہ سورج کا ماڈل بنا دیا. بعد میں وہ سارے کے سارے اٹھ کر کے کہاں چلے آئے ماؤنٹ آبو راجستھان. تو وہ ابھی بھی قابض ہے وہاں ان میں سنسکار تو ہے نا ماڈل بنانے کے سنسکار ہے کہ نہیں تو جو سنسکار ہے ماڈل بنانے کے تو ماڈل کو اصلی کہیں گے یا نقلی کہیں گے ماڈل کو کیا کہا جاتا ہے اصلی کہا جاتا ہے نا ماڈل تو ماڈل ہی ہوتا ہے وہ تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جو بھیڑ بکریاں تھیں کراچی میں وہ ساری ساری اکٹھی ہو کر کے کہاں گئی ماؤنٹ آبو اور وہ ان کے سنسکار ابھی بھی پڑے بھلے برہما بابا نے شریر چھوڑ دیا برہما بابا سورگ بنانے میں فیل ہو گئے تو انہوں نے اپنا ماڈل پھر سے بنانا شروع کر دیا. کیا نام دیا گودام کوئی بھی آتا ہے تو کہتے ہیں چلو ہم تمہیں سورگ کا نظارہ دیکھ کہاں لے جاتے ماؤنٹ آبو وہاں تو گودام اینٹوں کا بنایا ہے وہاں شانتی دھام اینٹوں کا بنایا ہوا لوگ دیکھ کر کے چمک ایسا تو کہیں دکھائی نہیں.